हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय श्लोक संख्या 19। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। आराध्यो भगवान् भ्रजेशतनयः तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेन या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेम तुमर्थो महा श्रीचैतन्य महाप्रभुर्म्यतमिदं तत्थाग्रहं न परः। व्रजे वसन्तं नवनीतचोरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचोरं श्रीराधिकाय हृदयस्य चोरम् चोराग्यगण्यं पुरुषं नमामि श्रीकृष्णश्यामं मनसा स्मरामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं श्रीवासुदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। 13वां अध्याय श्लोक संख्या 19। कृपया मेरे साथ साथ इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। विदुर धृतराष्ट्र को समझाते हुए बताते हैं कि प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हि चित् प्रभु स एष भगवान् कालः सर्वेषां न समाकतः। प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कही चित प्रभु स ईश भगवान काल सर्वेषां न समागतः प्रतिक्रियान यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभु स ईश भगवान् कालः सर्वेषां न समागतः।
जब श्लोक नंबर 18 में विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, राजन निर्गम्यताम शीघ्रम, जल्दी कीजिए राजन, अब राज्य समाप्त हो गया है, आपकी आयु भी समाप्त हो जाएगी, यदि यूं ही जीवन बीत गया, आपकी संसार में चेतना रह गई, भौतिक आसक्ति समाप्त ना हुई और शरीर छूट गया, फिर तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। मरने से पहले चेतना भगवान में पूर्णतया लग जानी चाहिए, तभी तुम्हारी शुद्ध गति होगी। तो क्या कीजिए, राजन निर्गम्यताम शीघ्रम, अभी सुबह का इंतजार मत कीजिए, निकलिए, चलिए जल्दी कीजिए, पश्येदम भयमागतम, देखिए तो सही मृत्यु आपके सिर पे खड़ी है, मृत्यु आने वाली है और आप सुख से बैठे हो, चलो यहाँ से निकलो। तब समझो धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर, अब मृत्यु जब आ ही रही है, मृत्यु जब आ ही रही है भयम आगतम, तो फिर उसका कोई उपाय करो ना, उसको कंट्रोल करने का कोई उपचार करो, भागने से थोड़ी ना मृत्यु मेरी जान छोड़ देगी। क्या हम किधर चले जाएंगे तो मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु रुक जाएगी? अगर मृत्यु आ रही है तो उसका कोई उपाय करना चाहिए। तब मानो विदुर उसे समझाते हुए कहते हैं, प्रतिक्रिया न यस्येह, प्रतिक्रिया का मतलब होता है उपचार, उसका कोई उपाय नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम मृत्यु को कंट्रोल कर सकें। प्रतिक्रिया न यस्येह, इस मृत्यु की कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है। अगर हम इस संसार में देखें, भगवान ने हर चीज का कोई न कोई उपचार जीव की बुद्धि में डाल ही दिया है, है ना? अगर जैसे कोई बूढ़ा होने वाला होता है तो यहाँ पर आजकल बहुत सारी ऐसी औषधियां हैं, इवन प्लास्टिक सर्जरी करके जीव को एकदम यंग दिखाया जाता है। जैसे सर्दी आती है तो उसका उपचार है, हीटर चलाते हैं और फिर सर्दी समाप्त हो जाती है। गर्मी आती है तो जीव अपनी बुद्धि से क्या करता है, एसी बनाया उसने और पता ही नहीं चलता, बाहर गर्मी होती है लेकिन रूम में एकदम ठंड। जैसे भूख लगती है तो भोजन जब हम खाते हैं तो उसका उपचार है, लेकिन मृत्यु का कोई उपचार नहीं है। इस संसार में हर एक वस्तु का कोई न कोई समाधान है, उसको किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, परंतु आज तक मृत्यु का कोई उपाय नहीं है और कभी भी नहीं होगा। हमने देखा है हिरण्यकश्यप इत्यादि बड़े बड़े राक्षसों ने बहुत कोशिश की मृत्यु से बचने के लिए। ब्रह्मा जी से इंश्योरेंस प्राप्त की कि न दिन में मरू, न रात में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न नर से मरू, न राक्षस से मरू, न धरती पर मरू, न आकाश में मरू, परंतु फिर भी मृत्यु तो आ ही गई। मृत्यु से कोई बच नहीं सका। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि किसी कोई ऐसा हम देखें। अब यहाँ पर आगे कहते हैं, कुतश्चित कर्हिचित प्रभु, कुतश्चित का मतलब होता है कहीं भी आप चले जाओ, चाहे किसी भी प्रकार से आप कोई भी योजना बनाओ, आप किधर भी चले जाओ, किसी के द्वार पर चले जाओ, हे प्रभु। प्रभु कहते हैं यहाँ पर धृतराष्ट्र को कि आप भले ही नेत्रों से हीन हैं, आप नेत्रहीन हैं, परंतु आप प्रज्ञा चक्षु आपको कहा जाता है, थोड़ी अक्ल यूज करके देखिए कि आज तक कभी किसी ने मृत्यु का कोई उपचार निकाला है? संसार में कहीं भी भाग कर जाएंगे, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पर इतने हालात अच्छे नहीं है तो हम कोई दूसरी जगह पर घर लेते हैं, वहां पर अच्छा हालात होंगे तो क्या वहां पर मृत्यु नहीं आएगी? कोई सोचते हैं पाकिस्तान में ऐसा है, आतंक बहुत है तो फिर हम इंडिया में चले जाएंगे तो क्या इंडिया में मृत्यु नहीं आएगी? कुछ भारत में लोग सोचते हैं हम यूएसए चले जाएं, तो चाहे किधर भी चले जाएं, इंग्लैंड चले जाएं, सिंगापुर चले जाएं या कोई भी बड़े दूसरे कंट्री में चले जाएं, कभी थोड़ा सा ध्यान करके देखो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मृत्यु मारना छोड़ गए हो, या समझो किसी ने अपने आप को हाइड कर लिया हो, यमराज जी को भूल गए हो, कोई 1000 साल का या 500 साल का व्यक्ति ऐसे बैठा हो, मतलब ऐसे जीवित हो अभी तक कि मृत्यु की नजर ना पड़ी हो उसको, चाहे वो किसी भी संसार के कोने में जाकर छिप जाता है। मृत्यु तो हर एक को आनी है, मृत्यु का कोई उपचार नहीं है। तो यहाँ पर बता रहे हैं विदुर जी धृतराष्ट्र को, प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित कहिचित प्रभु, चाहे किधर भी चले जाएं, चाहे कोई भी प्रतिक्रिया करने का हम कोशिश करें, चाहे किसी भी तरह से हम मृत्यु का कोई उपचार करने की कोशिश करें, परंतु मृत्यु तो आएगी, उसका कोई उपचार बनाया ही नहीं अभी तक और ना ही कभी बनेगा। जी भगवान श्री कृष्ण ने भगवदगीता में बता दिया, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम मृत्यु जन्म ध्रुवम जन्म मृतस्य, जिस व्यक्ति की का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के उपरांत वापस जन्म होना भी निश्चित है। तो फिर हमें कुछ ऐसा करना है कि दूसरा जन्म हमारा इस भौतिक प्रकृति में ना हो, जन्म होगा हमारा ऐसी जगह पर जहाँ से हमें कोई कहीं निकाला ना जा सके, जहाँ हमें कोई दुख ना हो, बुढ़ापा ना हो, रोग ना हो, जहाँ पर जन्म मृत्यु का चक्कर ना हो, जहाँ पर कोई कष्ट ना हो। ये ध्रुव है, ध्रुव का मतलब होता है डेफिनेटली होगा, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु डेफिनेटली होगी और जिसकी मृत्यु हुई है उसका डेफिनेटली जन्म भी होगा। तो ऐसी जगह पर च्वाइस हमारे ऊपर है, आप किधर जाना चाहते हो, दूसरा जन्म आप कहाँ प्राप्त करना चाहते हो। और भगवान ने बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमाय वैतिकोन्ते सदातत्वा, तुम जिस जिस भाव को याद करोगे उसी जगह पर प्राप्त करोगे। तो हे राजन, यदि यहाँ पर संसार और राज्य में आसक्त रहकर मृत्यु हो गई ना तुम्हारी, तो यहीं पर कोई पशु या कीट पतंग बनकर ना आ जाओ, तो कृपा करो यहाँ इस राज्य की आसक्ति से मुंह मोड़कर आध्यात्मिकता में उन्नति करने के लिए यहाँ से निकलो, क्योंकि स एष भगवान काल, वो वही भगवान जो है वो काल रूप में आ गया है, वो निश्चित रूप से आ रहा है, सर्वेषां न समागता, हम सबकी ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इस भौतिक आसक्ति को, इस राज्य के लोभ को, अभी तक जो तुम्हारे हृदय में महत्वाकांक्षा है कि मैं और भी भोग भोगूं, उसका उसको छोड़ो और चलो यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, निकलो अब, चलिए चलिए अब, और यहाँ पर बैठकर राज्य को भोगते रहे, और यहीं पर यदि मृत्यु आ गई फिर तो कभी शुभ गति प्राप्त नहीं होगी। अनुवाद देखिए, इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का उपचार नहीं कर सकता है। हे प्रभु, शाश्वत काल के रूप में भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि ऐसी कोई पराशक्ति नहीं है जो मृत्यु के क्रूर हाथों को थाम सके। किसी को चाहे कितना ही शारीरिक कष्ट क्यों न हो, वह मरना नहीं चाहता। आज की तथाकथित ज्ञान की वैज्ञानिक प्रगति के समय भी ना तो बुढ़ापे का कोई उपचार, ना मृत्यु का कोई उपचार, वृद्धावस्था क्रूर काल द्वारा दी गई मृत्यु के आगमन की सूचना है, और कोई भी शाश्वत काल के बुलावे को या परम निर्णय को स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, मृत्यु के क्रूर हाथों को कोई नहीं थाम सकता, कोई भी अपने आप को मृत्यु से नहीं बचा सकता है, चाहे वो कितना उसके पास बहुत ही शारीरिक बल प्राप्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मृत्यु से कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जब मृत्यु का काल का बुलावा आता है तो उसे अवश्य स्वीकार करना ही पड़ता है।
कोई मरना नहीं चाहता इस संसार में, सब जीना चाहते हैं, परंतु कोई भी शाश्वत काल तक जी नहीं सकता। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यह सब धृतराष्ट्र को बताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि वे विदुर से इस आसन भयावह स्थिति से निपटने के लिए कोई उपचार ढूंढ निकालने के लिए कहें, जैसा कि वे इसके पूर्व कई बार कह चुके थे। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, वैसे भी जब भी होता था ना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता था, तब धृतराष्ट्र जी विदुर को कहते थे, हाँ विदुर अभी हो गया है, ये समस्या हो गई है, आप इसका कोई समाधान कीजिए। क्योंकि विदुर के पास बहुत बुद्धि थी ना, बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, तो हर एक समस्या का कोई ना कोई समाधान वो खोज के दे देते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते, हो सकता है विदुर सोच रहा है कि अभी मुझसे पूछेगा, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, किंतु आज्ञा देने के पूर्व ही विदुर ने धृतराष्ट्र को सूचित किया कि इस जगत में इसका किसी के पास या किसी साधन से कोई उपचार प्राप्त नहीं हो सकता, मृत्यु का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई मृत्यु को कंट्रोल नहीं कर सकता, और चूंकि इस भौतिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है, अतः मृत्यु भगवान से अभिन्न है, जैसा कि स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 10.34 में कहा, मृत्यु सर्वहरश्चाहम्। भगवान कहते हैं, मैं ही मृत्यु के रूप में तुम्हारे सामने आऊंगा, और तुम्हारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो धन है, दौलत है, चाहे बुद्धि है, चाहे बल है, चाहे ऐश्वर्य है, जो कुछ कमाया है, जो कुछ तुमने इस संसार में संग्रह किया है, वो सब कुछ हरण करके चला जाऊंगा। तो श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, इस जगत में मृत्यु को ना तो किसी के द्वारा ना किसी साधन से रोका जा सकता है। हिरण्यकश्यप अमर होना चाहता था, और उसने कठिन तपस्या की थी जिससे सारा संसार थर थरा रहा था, और ब्रह्मा स्वयं उसे तपस्या से विरत कराने उसके पास आ गए थे। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा से यह वर मांगा कि वह उसे अमर कर दे, वो अमर हो जाए, किंतु ब्रह्मा ने कहा कि वे स्वयं सर्वोच्च लोक में रहकर भी मृत्यु के अधीन है, अतएव वे उसे अमरत्व का वरदान कैसे दे सकते हैं, अतः इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक में भी मृत्यु है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 8.16 में बताते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावृति नो अर्जुन माम उपैत्यत कुंते पुनर्जन्म न विद्यते। तो फिर अन्य लोकों के विषय में क्या कहा जाए जो ब्रह्मा के आवास ब्रह्मलोक से कहीं निम्न गुणों वाले हैं, जहाँ कहीं भी काल का प्रभाव है, वहीं वहीं जन्म रोग बुढ़ापा तथा मृत्यु इन कष्टों की श्रृंखला का अस्तित्व है, और ये सारे अजेय हैं। ये सारी तकलीफें इस भौतिक जगत में तो हमें आती हैं, इसलिए भगवान बताते हैं कि तुम्हारे संसार में आने का एक, अगर इस जीवन को सक्सेस कर सकते हो ना, तो एक ही तरीका है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों से, बारंबार जन्म मरण के चक्कर से, 84 लाख योनियों में भटकने से बच जाओ। तो जब धृतराष्ट्र ने इतना सुना कि विदुर जी कह रहे हैं स एष भगवान काला सर्वेशम न समागता, वही भगवान के रूप, भगवान काल के रूप में हमारे सामने आ गया है, और हमें अब उसका उसके लिए ये सब भौतिक आसक्ति को छोड़कर चले जाना चाहिए। तब मनु धृतराष्ट्र पूछे, विदुर कैसे छोड़ दूं, ये भौतिक आसक्ति, धन सम्मान, यह संतान, यह भूमि, यह मेरा घर, ये सब मैं कैसे छोड़ दूं, कितना मुश्किल से तो ये सब प्राप्त होता है। आज का मनुष्य जानता है कि धन संपत्ति घर बाल राज्य प्राप्त करना बहुत कठिन है ना, हर कोई चाहता है कि उच्च पदवी प्राप्त हो, और जब उसे प्राप्त हो जाती है तो क्या वो उसे इतना सरलता से छोड़ सकता है, कदापि नहीं। तो उसी तरह धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, कैसे छोड़ दूं मैं ये सब कुछ। तब विदुर से कहते हैं, श्लोक नंबर 20, येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यर्धनाधिभिः। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणः
प्रियतमाय रपि जनह सत्यो वियुच्चेत किमुतान्यर्दनाधिभि येन सैवाभिपन्नोयम् प्राणय प्रियतमाय रपि जनह सत्यो वियुच्चेत किमुतान्यर्दनाधिभि।
अब महाराज यह धन मान सम्मान घर भूमि की क्या बात कर रहे हैं। ये न सैवा भी पन्नोयम, ये न मतलब ये जो काल है, च एव एव मतलब निश्चय ही, अभी पन्ना मतलब पकड़ में या प्रभाव में, जब कोई काल की पकड़ में आ जाता है, जब कोई काल के प्रभाव में आ जाता है, तब उसका सबसे प्राणे प्रिय तमाय रपि, प्राणे कहा गया जीवन को प्रियतम, जो सबों को अत्यंत प्रिय है। आप धन दौलत की बात कर रहे हो, आप इस घर संसार की बात कर रहे हो, आप राज्य की बात कर रहे हो। ये काल तो जब संसार में किसी को दबोच लेता है तो उसके सर्व प्रिय प्रियतम, सबसे ज्यादा प्रिय जो उसके प्राण है, उसका जो जीवन है, उसकी आत्मा को निकाल कर लेके चला जाता है। और जना सद्यो वियुज्येत, और जब वो आता है तो सद्यो मतलब फौरन से उसे सब कुछ त्याग कर देना होता है, अपना प्राण तक त्याग कर देना होता है। किमोता अन्याय किमोतान्याय धनादि भी, और आप अन्य वस्तुओं के विषय में क्या कह रहे हो, धन दौलत समान संतान धरती घर राज्य, उसकी क्या बात कर रहे हो आप। अब तो महाराज यह प्रिय शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। अभी आप शरीर, ये जो शरीर है ना, ये जो आपके प्राण है ना, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो क्या आप धन की दौलत की राज्य की सम्मान की इस सब की बात कर रहे हो, क्या नहीं छूटा है, जरा सोचिए। आप अपना जीवन में देखिए, आपके सारे पुत्र चले गए, आपके सारे संबंधी चले गए, आपका सम्मान अब रहा कहाँ। आप तो पांडवों के टुकड़ों पर पल रहे हो और आप कह रहे हो मैं कैसे छोड़ दूं, ये सब धन दौलत ये घर राज्य ये सब तो छोड़ना ही पड़ेगा, यदि काल ने दबोच दिया तो तुम्हें अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। और यदि तुम्हारा जीवन तुमसे ले लिया गया, यदि मृत्यु आ गई और इस संसार की भौतिक वस्तुओं में आसक्ति बनी रही, तो फिर कोई नहीं बचा सकता आपको जन्म मरण के बारंबार दुखों में संसार में आने के चक्कर से। अनुवाद देखिए, जो भी परम काल अर्थात शाश्वत समय के प्रभाव में रहता है, उसे अपना सर्वोपरि प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन सम्मान संतान भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि लोग बहुत योजनाएं बनाते हैं, बहुत फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, हम ये करेंगे हम ये करेंगे, ऐसे घर बनाएंगे, ऐसा संसार में ऐसे मुल्क में कंट्री में इस तरह से शाश्वत शांति की स्थापना करेंगे, जीवों के जीवन मनुष्यों के जीवन को इतना सोफिस्टिकेटेड बनाएंगे, बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो लेकिन काल आता है और एक ही झटके में तुम्हारे सारे मंसूबों पर पानी फेर के चला जाता है। आप भौतिक वस्तुएं तो क्या, आपके प्राण भी आपसे लेकर चला जाता है, और तुम्हें उस समय पछताना पड़ता है कि ये समय यदि मैंने भौतिक वस्तुओं को ना देकर भगवान के पवित्र नाम का जप किया होता तो फिर आज मेरी सदगति हो जाती। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, एक महान भारतीय वैज्ञानिक जो योजना बनाने के कार्य में व्यस्त रहता था, वो क्या करता था, प्लानिंग्स करता था, मंसूबे बनाता था। जब योजना आयोग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने जा रहा था तो सहसा अजय काल का बुलावा आ गया और उसे अपना जीवन पत्नी बच्चे घर धरती धन आदि सब कुछ त्यागना पड़ा। मतलब आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो और वहां से आपकी प्लानिंग पहले से ही हो रही है, तो बुद्धिमानता ये है कि जितना जीवन मिला है, प्रहलाद महाराज तो कहते हैं कामार आचरित प्राज्ञो, यदि बुद्धिमान हो तो बचपन ही से धर्मान भागवतान इह, इस भागवत धर्म को स्वीकार कर लो, भगवान की भक्ति करना स्वीकार कर लो, क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म इतना सरलता से नहीं मिला है जितना सरलता से तुम उसका सर्वनाश कर रहे हो। दुर्लभम मानुष, ये दुर्लभ है बहुत, और तदर्थम गुरु दुरार्थदम। और दूसरी बात, एक तो मिला बहुत मुश्किल से है, दूसरा चला बहुत आसानी से जाएगा, इसलिए इसका सदुपयोग करो। बाकी प्लानिंग्स करना छोड़ दो, जिसने जन्म दिया है, जिसने मुख दिया है, वो खाने के लिए भी देगा, तुम उसका नाम लो, नाम लो, उसकी शरण में जाओ। भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरे नाम का स्मरण करता है, मेरी उपासना करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां, जो कंटिन्यूस मुझसे जुड़ा हुआ है, उसके योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं बैठा हुआ हूँ उसकी हर उस वस्तु को जो उसके लिए चाहिए, उसकी हर आवश्यकता को पूरा करने के लिए, और जो उसके पास है उसकी सुरक्षा करने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। तुम्हें केवल मेरी शरण में आना है, तुम्हें दूसरे प्लानिंग्स करना छोड़ दो, सोच सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, लेफ्ट इट ऑल ऑन कृष्णा, सब कुछ छोड़ दो। तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे परिवार का क्या होगा, और तुम्हारा फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो सब कृष्ण संभालेंगे। आपको केवल भगवान के पवित्र नाम का जप करना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, अपने नियत कर्म पूरे करने हैं, परंतु उनके लिए इतना ज्यादा उत्साह होना या उनके अंदर इतना ज्यादा आकर्षण या आसक्ति नहीं करनी है। सब कुछ कृष्ण, कृष्णास प्लानिंग्स आर मोर बेटर देन आवर ड्रीम्स। हम सोचते हैं हम ऐसा करना चाहते हैं, हम ये प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु भगवान के पास बहुत अच्छी योजना है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो था तो बड़ी बड़ी योजना बनाता था, लेकिन काल की योजना, काल का बुलावा आ गया और सब कुछ छोड़ के चला गया। आगे भारत में राजनीतिक उथल पुथल तथा पाकिस्तान एवं हिन्दुस्तान में इसके विभाजन के समय अनेक धनी तथा प्रभावशाली भारतीयों को काल के वश में आकर अपना जीवन, संपत्ति तथा सम्मान सभी कुछ समर्पित कर देना पड़ा। जितने बड़े बड़े पॉलिटिक्स आए हों, पॉलिटिक्स की बात छोड़ना, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर संसार में राक्षस आए, राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार, जो बड़े बड़े परिवार जिनके पास थे, बहुत बहुत शक्ति थी, एक न एक दिन उनका भी अंत हो जाता है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं, कुछ भी स्थायी नहीं है, तो सभी संसार में अपना सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, सारे विश्व में, सारे ब्रह्मांड में। इस तरह के सैकड़ों हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, जो सारे काल के प्रभाव के कारण अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो काल को जीत सके। श्री प्रभुपाद जी बोलते करोड़ों आए, करोड़ों चले गए, काल के प्रभाव में जब आते हैं, ये न चैवाभिपन्नोयम, जब काल का प्रभाव होता है तब सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है। प्राणाय प्रियतमाय रपि, अपने जीवन को भी छोड़ देना पड़ता है। फिर किमुतान यर धनादि भी, धन संपत्ति मान सम्मान की क्या बात करनी। आगे बताते हैं कि अनेक कवियों ने काल के प्रभाव के विषय में विलाप करते हुए कविताएं लिखी हैं। काल के प्रभाव से ही ब्रह्मांडों में अनेक विनाश लीलाएं होती हैं और कोई भी उन्हें किसी साधन से रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि हमारे नैतिक जीवन में ऐसी अनेक बातें घटती हैं जिनमें हमारा वश नहीं चलता और हमें उन्हें सहन करना पड़ता है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, दूसरों का क्या उदाहरण लिया जाए, हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर हम सोचते हैं कि हमारी हैं, यदि हमारी होती तो हमारा वश चलता ना, लेकिन हमारा कोई वश चलता नहीं और हमें उन घटनाओं को सहन करना पड़ता है, उनका कोई उपचार नहीं होता, यही काल का परिणाम है।
तो श्री प्रभुपाद की इच्छा, श्री प्रभुपाद जी ने समझाया कि काल पर तो किसी का बहस नहीं चलता, इसे जितना जल्दी हो सके, आपके पास जब तक समय है, जब तक आप अभी प्रेजेंट में, उन्होंने कहा था निर्गम्यतम शीघ्रम, जल्दी कीजिए, चलिए चलिए निकलिए यहाँ से। और शास्त्र कहता है वास्तव में जो बुद्धिमान होता है वो इन भौतिक वस्तुओं के लिए कभी भी प्रयत्न नहीं करता। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पांचवा अध्याय श्लोक नंबर 18 में
तस्यैव हेतु प्रियते तकोवितो न लभ्यते यत् भ्रमताम उपर्यत।
जो वास्तव में बुद्धिमान है वो तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, न लभ्यते यत् भ्रमतान उपर्यत, जो नहीं प्राप्त होती है इन सारे लोकों में, चाहे आप ऊपर के लोकों में चले जाओ या नीचे के लोकों में चले जाओ, वो तो प्राप्त होगी नहीं। तल्लभ्यते दुख वदन्यतः सुखम, बाकी संसार में जिस तरह आपको दुख अपने आपके नसीब के दुख हैं, आपके कर्मों के अनुसार आपको मिले हैं, तो उसी तरह से आपके नसीब के अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार जो आपको सुख मिलने वाले, दुख सुख मिलने वाले होंगे, वो भी तो मिलेंगे ना। जब दुख के लिए आज तक किसी ने प्रयत्न नहीं किया, लेकिन फिर भी संसार में जीव को वो सारे दुख मिलते हैं जो उसके नसीब में लिखे होते हैं, जो उसके भाग्य में लिखे होते हैं, तो वो सुख संपत्ति धन सम्मान वो किधर जाएगा, वो भी आपके आपके नसीब का है, आपके भाग्य का है, तो आपको ही मिलेगा, उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी भक्ति स्वतंत्र है, कृष्ण स्वतंत्र है, यदि आप अपने आप को इस योग्य बनाओगे ना, तभी आपको भक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मांड भ्रमियते कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांडों में भ्रमण करते 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 कोई एक भाग्यवान जीव होता है, गुरु कृष्ण प्रसाद अपाये भक्ति लता बीत, जिसे गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति प्राप्त होती है, तो फिर हमें उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, ताकि हम बारंबार जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करके भगवान के श्री चरणों में शरण प्राप्त कर सकें, और हमें 84 लाख योनियों में बारंबार तड़पना ना पड़े, बारंबार इस दुख भरे संसार में आना ना पड़े। उसका एक ही तरीका है, भगवान के पवित्र नाम का जप करना, भगवान की कथाओं को श्रवण करना, अपने हृदय में केवल भगवान के विषय में सोचना और भौतिक आसक्ति से बिल्कुल दूर रहना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना अवश्य भूलिएगा नहीं।